नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है, हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री। स्रोत जाहिर है पूज्य गुरुदेव का यही गहन उद्बोधन है।
नमस्कार।
अक्सर देखिए, गायत्री का नाम सुनते ही मन में मंत्र जाप, हवन या कोई विशेष पूजा विधि आ जाती है, पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। क्या ये हमारी चेतना, हमारे अपने अंदर से जुड़ा है?
बिल्कुल सही कहा आपने। पूज्य गुरुदेव यही तो स्पष्ट करते हैं कि सच्ची गायत्री कोई बाहर की देवी या शक्ति नहीं, वो हमारी अपनी ही परिष्कृत शुद्ध हुई चेतना है।
अच्छा।
हाँ, मतलब सिर्फ माला घुमाने से या कह लीजिए बाहरी कर्मकांड करने से उसकी कृपा नहीं मिलती। उसके लिए पात्रता, मतलब सुपात्रता, वो होनी बहुत जरूरी है। खजाना तो भीतर है, हम बाहर ढूंढते हैं।
ये पात्रता, ये शब्द सुनने में तो ठीक है, पर ये योग्यता आती कैसे है? गुरुदेव ने तीन बातें बताई है ना, पराई स्त्री को माता की तरह देखना, दूसरे का धन मिट्टी जैसा, और हर प्राणी को अपने जैसा समझना। ये तो बहुत ऊंची बातें हैं।
हाँ, ऊंची हैं, और यही कसौटी हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में कोई धक्केशाही या सिफारिश नहीं चलती।
वाह।
वहाँ तो योग्यता और क्रम, मतलब एक क्यू सिस्टम है, उसी से लाभ मिलता है।
क्यू सिस्टम।
जी, और ये तीन सिद्धांत, मातृवत परदारेषु, लोष्टवत परद्रव्येषु और आत्मवत सर्वभूतेषु, ये असल में पात्रता की सीढ़ियां हैं। इनको जीवन में उतारने की कोशिश करना, यही अभ्यास है। इसी से योग्यता आती है, और फिर उस योग्यता, उस आत्मबल को संभालना भी पड़ता है।
अच्छा, ये बात हुई पात्रता की। फिर गुरुदेव गायत्री को रितम भरा प्रज्ञा भी कहते हैं, सत्य धारण करने वाली बुद्धि। ये क्या है? और वो हंस का प्रतीक भी, वो थोड़ा समझाएंगे?
हाँ हाँ, जरूर। रितंभरा प्रज्ञा मतलब वो विवेकशील बुद्धि जो केवल सत्य को, सही को ही ग्रहण करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हंस वो गायत्री का वाहन है, वो इसी विवेक का प्रतीक है।
कैसे?
जैसे कहते हैं ना, हंस पानी मिले दूध में से सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है।
हाँ हाँ, सुना है।
या फिर वो कीचड़ में भी कमल पर बैठता है पर गंदा नहीं होता, वो सिर्फ मोती चुगता है, कंकड़ नहीं।
ठीक वैसे ही जिसकी प्रज्ञा रितंभरा हो गई, वो व्यक्ति जीवन के भले बुरे में से केवल सत्य और उचित को ही चुनेगा, गलत का सहारा नहीं लेगा, चाहे कष्ट उठाना पड़े। ये विवेक पाना, ये प्रज्ञा जगाना सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर असलियत में कैसे उतारें इसे? क्या यहीं पर साधना का रोल आता है?
बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यहीं साधना का असली मतलब सामने आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बाहरी क्रियाएं, पूजा पाठ, वो तो बस शरीर है, कलेवर है।
अच्छा।
साधना का जो प्राण है, उसकी जो आत्मा है, वो है चेतना का परिमार्जन, मतलब अपनी चेतना को साफ करना।
साफ करना किस चीज से?
हमारी चेतना पर न जाने कितने जन्मों के अहम, गलत विचार, बुरी आदतें, इनकी परतें जमी होती हैं। गुरुदेव इन्हें मल, आवरण और विक्षेप कहते हैं। गंदगी, पर्दे और भटकाओ, इन्हें रगड़ रगड़ कर हटाना पड़ता है। जैसे जंग लगे बर्तन को मांजना पड़ता है ना चमकाने के लिए।
हाँ हाँ,
मेहनत लगती है।
बस वही मेहनत, वही रगड़, वही मशक्कत चेतना के लिए करनी होती है। इसीलिए कहते हैं, मन साधे सब सधे, मन को साधना पड़ता है।
साधना मतलब परिश्रम।
गुरुदेव ने इसके कुछ और उदाहरण भी दिए हैं क्या समझने के लिए?
हाँ, कई दिए हैं। जैसे किसान को देखिए, वो कितनी मेहनत करता है, तब जाकर बंजर जमीन से भी सोना, मतलब फसल उगा लेता है ना?
सही बात है।
या पहलवान, रोज घंटों पसीना बहाता है, तब जाकर उसका शरीर फौलादी बनता है। विद्वान लोग, जैसे कालिदास का उदाहरण देते हैं गुरुदेव, वो लगातार अभ्यास से अपनी बुद्धि को तेज करते हैं। और एक उदाहरण तो बहुत ही दिलचस्प है, बाटा का।
बाटा जूते वाले?
हाँ वही। कैसे एक साधारण जूते बनाने वाले ने अपने काम में पूरी लगन लगाई, क्वालिटी पर ध्यान दिया, जिसे गुरुदेव प्रेस्टीज पॉइंट कहते हैं, और अथक परिश्रम, वो रगड़ जारी रखी, और साथ में मनोयोग, मतलब पूरे मन से काम किया, और देखते देखते दुनिया भर में नाम कमाया।
कमाल है।
तो ये दिखाता है कि दुनिया का कोई भी काम हो, तरक्की के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, योग्यता, श्रम और मनोयोग, यानी पूरी तरह डूब कर काम करना। वैज्ञानिक भी तो ऐसे ही होते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितना कठोर परिश्रम, कितनी एकाग्रता, तब जाकर वो एटम जैसी छुपी हुई शक्ति को खोज पाते हैं।
तो आप कह रहे हैं कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाना पड़ता है साधना से।
निश्चित रूप से, बिल्कुल यही बात। गुरुदेव का यही तो मुख्य संदेश है, जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल पेड़ की संभावना छुपी होती है।
हाँ।
या एक अणु में कहते हैं पूरा ब्रह्मांड समाया है। वैसे ही हम सबकी चेतना में, जीवात्मा में, परमात्मा की सारी शक्तियां बीज रूप में मौजूद हैं। साधना बस उस बीज को पानी देने, खाद देने जैसा है, ताकि वो पेड़ बन सके।
चेतना की शक्ति पदार्थ से ज्यादा,
कहीं ज्यादा। आप सोचिए, एक बड़ा हवाई जहाज है, उसमें इंजन है, सब कुछ है,
बिल्कुल,
पर उसे उड़ाता कौन है?
पायलट।
हाँ, पायलट की चेतना है ना, वो जड़ इंजन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुदेव एक और उदाहरण देते हैं।
हाँ।
कि अगर पृथ्वी अपने संतुलन बिंदु पर हो तो एक बच्चे का घूंसा भी उसमें असंतुलन पैदा कर सकता है। ये चेतना की विशाल अनदेखी शक्ति का प्रतीक है। मानव सभ्यता का विकास भी तो चेतना का ही विकास है।
बिल्कुल।
आदि मानव से आज तक का सफर चेतना के विकास का ही तो सफर है।
तो अगर चेतना में इतनी शक्ति है तो क्या हमारा ये जो बिखरा बिखरा सा अस्त व्यस्त जीवन है, इसे भी साधना से सुधारा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है?
हथौड़ी है जिससे उस अनगढ़ पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, सुनार सोने के डले से सुंदर गहना गढ़ता है, या संगीतकार रियाज कर करके अपने सुर पक्के करता है, वैसे ही साधना से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को, अपने कामों को अनुशासित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, उन्हें सही दिशा देते हैं।
हाँ।
यही जीवन को गढ़ने की साधना है।
तो मतलब इस पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि वो सारी शक्तियाँ, सारे वरदान, सिद्धियाँ, वो सब कहीं बाहर नहीं है, किसी देवी देवता में नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो सब हमारे अपने अंदर है। पूजित गुरुदेव का यही तो अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है कि वास्तविक देवी, असली शक्ति का स्रोत, वो हमारी अपनी ही परिष्कृत जागी हुई अंतस चेतना है।
हमारी अपनी चेतना ही देवी है।
हाँ, सारे चमत्कार, सारी दिव्यता, वो सब इसी समरी हुई, निखरी हुई चेतना से ही प्रकट होते हैं। हम तो बस उस कस्तूरी मृग की तरह हैं, जो अपनी ही नाभि में रखी कस्तूरी की खुशबू के पीछे पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है।
जबकि खजाना तो अंदर ही था।
बिल्कुल, खजाना भीतर है।
तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ हुई कि सच्ची आध्यात्मिकता, या कहें कि वास्तविक गायत्री साधना, वो बाहरी कर्म कांडों में उतनी नहीं है जितनी अपनी अंतस चेतना को लगातार मेहनत से, अनुशासन से और विवेक से निखारने में है, उसे सवारने और जगाने में है।
एकदम सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके लिए कि अगर हमारी अंत चेतना में वाकई इतनी असीम शक्ति छुपी है, तो क्यों ना आज ही अपने जीवन के किसी एक बिखरे हुए हिस्से को, किसी एक अनगढ़ आदत को चुने और उसे तराशना शुरू करें। क्या पता यही उस भीतरी शक्ति को जगाने का पहला कदम साबित हो।